वहां पर कुछ लिखा हुआ है, सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। ये जो कार्तिक का महीना, जिसमें हम हर रोज सुबह शाम भगवान की एक बहुत ही विशेष लीला का गुणगान करते हैं, वो है भगवान की श्री दामोदर लीला। तो क्योंकि कार्तिक के महीने का केवल एक हफ्ता बाकी रह गया है, तो हमने सोचा कि आज भगवान की ये जो विशेष दामोदर लीला है, इसके विषय में हम कुछ चर्चा करें। करें? सबसे पहले तो ये जो कार्तिक का महीना है, इसे भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे वरिष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उनका स्वरूप बताया गया है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं सभी महीनों में से कौन से महीने हैं? मार्ग शीर्ष, मासा नाम मार्ग शीर्षाणाम, भगवान कहते हैं कि सभी महीनों में से भगवान श्री कृष्ण मार्ग शीर्ष का महीना है। और मार्ग शीर्ष का महीना कार्तिक के महीने के पश्चात आता है, जो अब आने वाला है। तो भगवान स्वयं विस्तार में हुए हैं अपने मार्ग शीर्ष के महीने में, और श्रीमती राधा रानी उनके स्वरूप हैं ये कार्तिक का महीना। तो जैसे हमारे गौड़िया सिद्धांत में हम सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत नहीं हो सकते, हमें जाना है तो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जाना होता है। उसी प्रकार से ये जो महीने हैं दोनों, ये महीने भी इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि मार्ग शीर्ष में यदि जाना है तो कार्तिक के थ्रू जाना होगा, और वो है श्रीमती राधा रानी का महीना। और वो क्यों श्रीमती राधा रानी का महीना कहा गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से इस महीने में अपने जो नित्य पार्षद हुए उनके उनके साथ बहुत ही मधुर लीलाएं उन्होंने की। शरद पूर्णिमा जिससे महीना प्रारंभ हुआ, फिर दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, गोचारण लीला, और कितने इतने अनगिनत भगवान ने लीलाएं विशेष रूप से इस कार्तिक मास में की। और इन सब लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण लीला हम कह सकते हैं ये दामोदर लीला, क्योंकि भगवान की सभी लीलाओं में से ये एक लीला है जिसका गुणगान करने के लिए हमें पूरा एक महीना चाहिए, और वो भी सुबह शाम। ऐसी कौन सी भी भगवान की लीला नहीं है जिसका गुणगान हम पूरे महीने भर करते हैं। ये दामोदर लीला एक ऐसी लीला है भगवान की। और इस लीला में क्या विशेषता है कि भगवान इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए इस दामोदर लीला के द्वारा? हालांकि हम हर वर्ष ये लीला सुनते हैं और रोज गाते भी हैं इस महीने में, तो लगता है कि पता है मुझे दामोदर लीला क्या है। अब प्रभु जी शुरू करेंगे दिवाली के दिन क्या हुआ, मुझे पता है दिवाली के दिन माता यशोदा ने वो रस्सी ली, दो उंगली छोटी थी, पूरी लीला मालूम है मुझे। हर साल सुनता हूं और ये सुबह शाम गा भी रहा हूं, परंतु यदि हमें एक अंश भी इस लीला का पता होता तो भगवान श्री दामोदर भी हमारे भक्ति के बंधन में बंध जाते थे। अब तक भगवान नहीं बंधे हैं हमारी भक्ति के बंधन में, इसका अर्थ क्या है कि अब तक हमने ये लीला को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ भी नहीं किया है। तो भगवान ने वैसी तो बहुत सी लीलाएं की माता यशोदा के साथ, हमने इसकी चर्चा अपने जन्माष्टमी के प्रवचनों में की थी। भगवान ने कौन कौन सी लीला की माता यशोदा के साथ? एक तो दामोदर लीला, और कौन सी लीला की? माखन चोर हो गया दामोदर लीला, माखन चोर लीला है वो। और कौन सी लीला? मृद भक्षण लीला, मृद भक्षण लीला वो भी माता यशोदा के साथ भगवान ने की। फिर चरण विहार लीला, कवि कर्णपुर अपने पुस्तक में लिखते हैं कि चरण विहार लीला भगवान ने प्रारंभ की माता यशोदा के साथ। और अन्य वृंदावन में नंद भवन में कितनी ऐसी अनगिनत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से माता यशोदा के साथ की। और जब भगवान माखन चोरी किया करते थे विशेष रूप से, चाहे किसी के भी घर में भगवान माखन चोरी किया करते थे, उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता था कि कैसे मैं माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करूं। जब वो अन्य गोपियों के घर पर माखन चोरी किया करते थे और वो आकर शिकायत किया करती थी माता यशोदा से, तो माता यशोदा वो डांटती थी, फटकारती थी भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें आनंद लिया करते थे कि माता यशोदा जब मुझे डांटती हैं, तो भगवान कहते हैं कि गोपियां जब भगवान को डांटती हैं तो ये जितने भी बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि जो वेद स्तुति कर रहे हैं मेरी, भगवान कहते हैं कि उसमें मुझे नींद आ जाती है जब वो लोग मेरी वेद स्तुति करते हैं। परंतु जब माता यशोदा और ये गोपियां मुझे डांटती हैं तो वो डांट, वो फटकार उनकी ये वेद स्तुति से अधिक मधुर उनको लगती है। तो भगवान विशेष रूप से माखन चोरी की लीला उन्होंने की ताकि माता यशोदा का प्रेम वो प्राप्त कर सके। एक श्री वैष्णव आचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखी है और वो कहते हैं कि माता यशोदा अचरज किया करती थी कि मेरा कृष्ण चोरियां करता है, परंतु चोरी में भी माखन क्यों चोरी करता है? तो अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये चोरी करने की वृत्ति है, तो चोरी बहुत सी वस्तुओं को कर सकते हैं, परंतु उन सब में से माता यशोदा ये सोचती थी कि माखन की ही चोरी क्यों करता है। तो एक दिन गर्गाचार्य आए वृंदावन में और गर्गाचार्य को यह प्रश्न माता यशोदा ने पूछा कि आप कुछ भविष्यवाणी वगैरह जानते हैं, ज्योतिषी टाइप के आप हैं, उन्होंने नामकरण किया था, तो आप बताइए कि ये मेरा जो लाला है वो माखन चोरी ही क्यों करता है। मतलब ये कहने का अर्थ ये नहीं था कि और कुछ चोरी करे, परंतु एक प्रश्न उठा कि सब चोरियों में से माखन ही क्यों। तो वो समझाते हैं यशोदा माई को, वो कहते हैं कि यदि ये माखन भगवान श्री कृष्ण को नहीं अर्पित किया जाएगा तो ये और कोई इसको ग्रहण करेगा, और यदि और कोई इसे ग्रहण करेगा तो वो व्यभिचार के समान हो सकता है और वो इसकी तुलना करते हैं कि माखन बनता है घड़े में। घड़े में जब दही रखा जाता है और दही को जब मथा जाता है तो तो दही के मथने से माखन उर्जित होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो घड़ा है, दही का घड़ा, इसकी तुलना हमारे शरीर से की गई है, हमारे शरीर की तुलना उस दही के घड़े से की गई है। तो दही की तुलना किससे की गई है? हमारे मन से। शरीर के अंदर हमारा मन है, तो घड़े की तुलना शरीर से, दही की तुलना मन से। क्यों मन से दही की तुलना की गई है? क्योंकि दही कैसे बनता है? जब दूध में विकार उत्पन्न होता है तो वो दही बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे मन में कितने विकार हैं, कितने अनगिनत विकार हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर ले आए हैं। तो इसीलिए हमारे मन की तुलना उस विकारित दही से की गई है। और जब उस दही को मथा जाता है, जिस प्रकार से जब इस मन को मथा जाता है, तो इसका शेष क्या बाकी रह जाता है? कृष्ण प्रेम। और उस कृष्ण प्रेम की तुलना माखन से की गई है कि जब दही को मथा जाता है तो उसका शेष बाकी रह जाता है माखन। और वो माखन यदि हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो और किसी को अर्पित करना होगा। वो जो प्रेम हमारे मन का, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करेंगे तो वो यहां के कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति को करना होगा। तो वो व्यभिचार की तुलना उससे की गई है। इसलिए गर्ग मुनि ने माता यशोदा को कहा कि इसीलिए वो माखन चोर हैं, कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं की स्वेच्छा से नहीं अर्पित करता तो वो चोरी कर लेते हैं। वो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कब इसके घड़े के अंदर का दही, विकारित दही को जब मथा जाएगा तो उसके अंदर का कृष्ण प्रेम उर्जित होगा और मैं फिर उसे चोरी करूं। तो ये बहुत विभिन्न प्रकार के कारण थे कि भगवान ये माखन चोरी की लीला क्यों किया करते थे। परंतु विशेष रूप से उस दिन, दिवाली के दिन, विशेष रूप से हमें समझना चाहिए कि दिवाली का दिन केवल अच्छे वस्त्र पहनने के लिए नहीं होता, और केवल ये पटाखे चलाने के लिए दिवाली का दिन नहीं है। कोई शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि दिवाली के दिन खुद की नींद और दूसरों की नींद हराम कर लोगों की नींद का दिवाला उतारे हम। कई बार हम बंबई में जब दिवाली के दिन कुछ प्रवचन होता है तो पूछते हैं कि कितने लोग जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती, तो सब लोग एक दूसरे के पास देखते हैं, भाई सभी मनाते हैं, कोई प्रश्न है पूछने का, दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी वो अयोध्या लौटे थे। प्रभु रामचंद्र जी ने सबसे पहले वध किया किसका? रावण का। रावण का वध किया विजयदशमी के दिन। तो विजयदशमी का दिन उसका प्रतीक है जब हमारे अंदर का रावण भगवान मारते हैं उसका। वो है काम। जो हमारे अंदर रावण है उसकी तुलना काम से की गई है। तो विजयदशमी के दिन हमारे अनर्थ की निवृत्ति होनी चाहिए, उसका प्रतीक है। और फिर उसका जश्न मनाया गया था अयोध्या में। तो अयोध्या की तुलना हमारे हृदय से की गई है, जो कि लंका में परिणित हो चुका है। जहां पर राम को रहना चाहिए वहां राम के अलावा या राम के बजाय काम है, और काम के प्रतीक कौन था? रावण। और रावण किसका नरेश था? लंका का नरेश। तो दिवाली वास्तविक रूप में हम तब मनाएंगे जब हम प्रभु रामचंद्र जी को इस अयोध्या में, हमारे हृदय में, जिसकी तुलना अयोध्या से की गई है, जब उन्हें स्वीकृति देंगे अंदर आने के लिए। और अयोध्या निवासी, इसको दीपावली भी कहते हैं क्योंकि अयोध्या निवासी 14 वर्ष तक घोर अंधकार में उन्होंने अपना जीवन बिताया बिना प्रभु रामचंद्र के संग के। तो इसलिए जब उन्हें समाचार मिला कि प्रभु रामचंद्र जी अब लौट रहे हैं अयोध्या में, तो पूरा अंधकार था, 14 वर्ष तक पावर फेलियर था, इसलिए उन्होंने दीपों की आवली लगाई पूरे अयोध्या नगर में भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए। ऐसा नहीं कि जब समाचार मिला कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो चलो पटाखे खरीद कर लेकर आओ, अयोध्या में किसी ने पटाखे नहीं चलाए थे, केवल प्रभु रामचंद्र जी ने एक पटाखा चलाया रावण को मारने के लिए और वो था ब्रह्मास्त्र। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने दिवाली के दिन ये दामोदर लीला की, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन इस कार्तिक मास में है कि भगवान ने इतनी मधुर लीला और आचार्य ने इतनी टीकाएं दी हैं इस लीला के पीछे, कि भगवान माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे विशेष रूप से उस दिन, और इसीलिए माता यशोदा भी अपना विशेष प्रेम देना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को ये दामोदर लीला के द्वारा। इसीलिए उनका जो नाम है यशोदा, इसका अर्थ क्या है, जो यश प्रदान करे, और वो यश किसका है, भगवान श्री कृष्ण का। जो भगवान श्री कृष्ण के यश को प्रदान करती है दूसरों को, वो है यशोदा। तो माता यशोदा जब इतनी सारी शिकायतें सुनती थी कि मेरा कान्हा इतनी चोरियां कर रहा है माखन की, तो ये प्रश्न माता यशोदा को उठा कि वो माखन की चोरी क्यों करेगा, क्योंकि हमारे घर पर इतना माखन है, कितना माखन माता यशोदा के घर पर हुआ करता था, 9 लाख गौएं थी, केवल 9 लाख गौएं। आजकल तो किसी डेयरी फार्म में भी जाओगे तो 9 लाख गौएं नहीं मिलेगी वहां पर, यहां पर केवल माता यशोदा और नंद महाराज अकेले ही उनकी 9 लाख गौएं थी। तो 9 लाख गौएं और कितना उसमें से दूध निकलता होगा, ऐसा नहीं था कि केवल कुछ गाय दूध दिया करती थी, सभी गाय दूध देने वाली गाय थी, और इतना दूध वृंदावन में होता कि जब ये गैया चरने के लिए जाती थी तो इनके स्तनों से इतना दूध चूता रहता कि पूरा जो ब्रज भूमि का जो मंडल था, वो पूरा ब्रज मंडल वो इनके दूध से सराबोर रहता गैयों के। तो माता यशोदा सोच रही थी कि इतना दूध है, इतना दही, इतना माखन, फिर भी ये दूसरों के घर पर जाकर क्यों चोरी करता है। जैसे कई बार हम भी ये अनुभव करते हैं कि हमारे घर पर सब कुछ उपलब्ध है परंतु फिर भी होटल जाकर खाएंगे, सब कुछ है घर पर, या जब हम प्रसादम में बैठते हैं पंगत में तो देखा है कि 10-11 आइटम है फीस्ट में, तो जब उसका सर्विंग शुरू होता है तो पहले से दूर से देख लिया है कितने कितना आइटम है, सब ये 3 स्वीट हैं, 2 सब्जी हैं, सब सब कुछ देख लेते हैं, तो अब प्रतीक्षा में रहते हैं कि वो सब प्लेट में आना चाहिए, वो बाल्टी से यहां पर आना चाहिए। तो जैसे वो सर्विंग शुरू होता है और सर्विंग में यदि एक आइटम भी कम आ गया, एक आइटम भी कम आ गया और बगल वाले के या सामने वाले के प्लेट में वो आइटम है, तो जितना आइटम है प्लेट में उस पर कुछ ध्यान नहीं रहता, वो बाल्टी कहां गई, वो जलेबी की बाल्टी अब तक आई नहीं। अरे इतना सब कुछ प्लेट में है, उसको तो शुरू करो। नहीं, उसके प्लेट में कैसे आ गई? तो इसलिए वो क्या हिंदी में कहावत है, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है और मीठा दिखता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब दूसरों के घरों में जाकर माखन चोरी कर कर खाते तो वो अधिक उसमें आस्वादन लेते थे। तो माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, हो सकता है कि मैं स्वयं ये माखन इसको निकाल कर नहीं दे रही, ये इसलिए जाकर चोरी करता होगा। तो इसलिए माता यशोदा ने सोचा कि आज दिवाली के दिन स्वयं मैं अपने हाथों से दही मथकर माखन बनाकर खिलाऊंगी कृष्ण को। तो माता यशोदा ने क्या योजना की, किस प्रकार का माखन माता यशोदा निकालने के लिए उन्होंने योजना की? सबसे पहले तो 9 लाख गौओं में से माता यशोदा ने विशेष 8 गौओं को चुना, जो सबसे विशेष गैया थी उनकी, और उनको कहा गया है पद्मगंधा गाय। और पद्मगंधा गाय इनको माता यशोदा बहुत ही विशेष घास खिलाया करती थी। वो घास का भी नाम पद्मगंधा घास। पद्मगंधा का अर्थ क्या है कि वो घास जिसकी गंध पद्म के समान है। अब कलयुग में हमें कुछ ज्ञान ही नहीं पद्म क्या है और पद्म की गंध क्या है, परंतु यदि दुर्गंध के विषय में कुछ कहें तो तुरंत पता लग जाता है। परंतु पद्म गंध तो पद्म किसी ने देखा नहीं है, तो उसकी गंध क्या सूंघेंगे। और ये पद्म नहीं है वास्तविक रूप में, पद्म बहुत विशेष होते हैं। तो माता यशोदा ने पद्म गंध घास इन पद्म गंध गायों को खिलाया, और इन गायों में से 7 गायों का पद्म गंध दूध, वो दूध में भी पद्म की गंध आया करती थी, ऐसा दूध। आजकल तो ये पैकेट का दूध मिलता है जिसके अंदर केवल वो डेयरी की दुग्धगंध होती है उसके अंदर, और कुछ नहीं। परंतु ये दूध इतना विशेष कि इसके अंदर पद्म की गंध होती थी। और ये 7 गायों का दूध एक गाय को माता यशोदा ने पिलाया, और वो एक विशेष गाय का दूध निकालकर उसका दही जमाकर उस गाय के दूध के दही का माखन निकाल रही थी माता यशोदा उस दिन। तो माता यशोदा सुबह सुबह जब दही को मथ रही थी, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि दही को मथते समय माता यशोदा कीर्तन कर रही थी। और किसका कीर्तन? कोई सिनेमा का गाना नहीं गा रही थी, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, उनकी कीर्ति का गान कर रही थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि गांव में यह देखा जाता था कि जब वहां की गृहिणी, घर की गृहिणी किसी भी सेवा में रत रहती थी, तो वो भगवान की लीलाओं को गीत में परिणित कर गाया करती थी। ऐसा नहीं कि रेडियो लगा लिया आप खाना बनाते समय और बस वो रेडियो का गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रहे हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा और जो बच्चा वो खाएगा खाना, वो भी वही सुनते हुए, उसकी भी चेतना वही होगी, वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो हो सकता है जब मरेगा तो एक धोबी बन जाएगा फिर। यदि वॉशिंग पाउडर निर्मा सुनते हुए कोई मरेगा तो अगले जन्म में धोबी बन सकता है शायद, निर्मा पाउडर लेकर। परंतु यहां पर माता यशोदा वो भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर रही थी, और बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है सुखदेव गोस्वामी ने कि जब माता यशोदा उस दही को बिलो रही थी, तो माता यशोदा के जो कंगन है हाथ के, वो कंगन बहुत मधुर ध्वनि वो निकाल रहे थे, और माता यशोदा के जो कानों के कुंडल हैं वो कुंडल हिल रहे थे, बज रहे थे, उसमें से बहुत सुंदर ध्वनि आ रही थी। अब आध्यात्मिक संसार में कोई वस्तु नहीं है वहां पर, वहां पर हर एक व्यक्ति है। तो माता यशोदा के हाथों में जो कंगन, वो भी कोई वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति है, वो भी भक्त हैं भगवान के। तो जो कंगन थे माता यशोदा के हाथों में, वो कंगन सोच रहे थे। सोचिए, कंगन सोच रहे थे ये आध्यात्मिक संसार। तो कंगन सोच रहे थे कि माता यशोदा के जो हस्त हैं, उनके जो हाथ हैं, ये इतने भाग्यशाली हैं कि ये व्यक्तिगत सेवा करते हैं रोज भगवान श्री कृष्ण की, व्यक्तिगत सेवा में रत रहते हैं ये हाथ माता यशोदा के। माता यशोदा व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण को निहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, श्रृंगार करती थी, कभी कभी थप्पड़ भी मारती थी उसी हस्त से। तो ये कंगन सोच रहे थे कि क्या भाग्य है इन हाथों का जो व्यक्तिगत सेवा में लगे रहते हैं कृष्ण की, और हमारा क्या भाग्य है कि हम उन हाथों पर हैं। ये कंगन सोच रहे थे, और कंगन ये भी सोच रहे थे कि माता यशोदा ये कीर्तन कर रही हैं, तो यहां पर कोई करताल बजाने के लिए नहीं है, तो इसलिए चलो हम बजने शुरू करते हैं, करताल की तरह ध्वनि निकालते हैं और माता यशोदा के कीर्तन में सहायक होते हैं। तो इसलिए जो कंगन थे वो ये सोचकर बज रहे थे, और जो कुंडल थे माता यशोदा के कानों में, वो कुंडल भी बहुत मधुर ध्वनि वो निकाल रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये माता यशोदा के कर्ण कितने भाग्यशाली हैं कि माता यशोदा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी सुनती हैं रोज। देखिए ये कैसा अनुभव होगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी यदि अपने कानों से सुने तो कैसी वाणी होगी, कितनी सुंदर वो वाणी होगी भगवान श्री कृष्ण के मुख की। और माता यशोदा के कर्णों का यह भाग्य था कि वो रोज भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी वो कर्ण सुना करते थे। तो जो कुंडल थे वो सोच रहे थे कि ये कर्ण इतने भाग्यशाली हैं माता यशोदा के, और हम इतने भाग्यशाली हैं, तो इसलिए वो भाव विभोर होकर वो कुंडल नाच रहे थे, इसलिए उसमें से ध्वनि आ रही थी। और माता यशोदा के स्तनों में जो दूध था वो दूध बाहर आ रहा था, जब माता यशोदा दही बिलो रही थी तो जो दूध था माता यशोदा के स्तन में वो भी सोच रहा था। दूध क्या सोच रहा था कि आज माता यशोदा ये दही बिलो रही है, माखन स्वयं वो बनाकर खिलाने वाली है, तो कृष्ण हमें थोड़ी पिएंगे आज, तो हमारे जीने का क्या मकसद। तो इसलिए वो बाहर निकलकर अपने आप का जीवन खत्म करने के लिए आए थे। तो ये सुंदर टीकाएं हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा था जब माता यशोदा केवल दही बिलो रही थी, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को कहा है, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर भी मेरे भक्त आकर मेरा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वहां पर मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण वो जग गए, और भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि माता यशोदा मेरा कीर्तन कर रही है तो मुझे वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उठ गए और तुरंत भागने लगे जहां पर माता यशोदा दही बिलो रही थी। अब यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये पूरी लीला जब उन्होंने सुनाई परीक्षित महाराज को, दामोदर लीला, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं एक सुंदर श्लोक में कि माता यशोदा का प्रेम इतना ज्यादा गहरा था कि भगवान श्री कृष्ण एक बंदी बन गए माता यशोदा के प्रेम के। जैसे यहां पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक जैसे कोई गुनहगार जिसको बंदी बनाया गया है, वैसे भगवान खड़े हैं और भगवान का गुणगान हो रहा है। वो चाहते हैं कि मेरा गुणगान कैसे हो, एक गुनहगार के रूप में। अब कौन व्यक्ति है इस संसार का कि जो अपना फोटो खिंचाएगा जेल के अंदर कि मेरे अंदर बेड़ियां बांधी हैं, हथकड़ी बांधी है, खींचो मेरा फोटो पेपर में छापो। जब कई व्यक्तियों को जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उनका पेपर खींचा जा उनका फोटो खींचा जाता है पेपर में डालने के लिए, तो वो आंखों में कुछ पट्टी बांध लिया जाता है उनको, और उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, उस प्रकार से उनको दिखाया जाता है। यहां पर देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो कह रहे हैं कि मेरा फोटो बड़ा करो और बड़ा कर कर लगाओ। और कौन सा फोटो? जिसके अंदर मैं कैदी की समान खड़ा हूं, एक बंदी बनाया गया कैदी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक में, इस लीला के अंत में एक सुंदर श्लोक में परीक्षित महाराज को वो कह रहे हैं कि भगवान ने ये लीला, उसका एक प्रयोजन यह था कि सारे जो देवता थे, जो अपने आप को ईश्वर मान रहे थे, जो देवता हैं वो सब ईश्वर हैं, तो वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, और उन देवताओं का, उन ईश्वर का ईश्वर कौन है? भगवान। तो भगवान जो कि इन ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये दिखा रहे हैं इस लीला के द्वारा कि मेरा ईश्वर कौन है? माता यशोदा। तो सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संदर्शितः यंग हरिणा भृत्य वश्यतः स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। एवं संदर्शितः, दर्शन, हम ये शब्द को जानते हैं, दूरदर्शन को अच्छा जानते हैं। दर्शन, जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में सारे देवताओं को, एवं संदर्शिता, सम्यक रूप से मेरा दर्शन करो। और कैसा दर्शन करो? ये दर्शन, जब मैं बांधा हुआ हूं इस उखल से, माता यशोदा ने बांधा है, ये दर्शन मेरा करो, सम्यक रूप से मेरा ये दर्शन करो। और ये दर्शन मैं इसलिए दे रहा हूं तुम सब ईश्वरों को, देवताओं को, ताकि तुम ये समझ लो कि तुम्हारा जो ईश्वर है मैं, मेरा ईश्वर कौन है? ये है माता यशोदा। तो ईश्वर के कई गुण होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो अपनी टीका में, इस लीला में कहते हैं कि विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस दामोदर लीला में ये सब देवताओं को दिखाया कि मेरे जितने भी ईश्वरीय गुण हैं वो सब का परित्याग मैंने किया है, एक एक कर कर इस दामोदर लीला में। और वही हम देखेंगे कि अब जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पास जा रहे हैं, दामोदर लीला शुरू होने वाली है, तो कैसे इस लीला के एक एक पद में भगवान ने अपने एक एक ऐश्वर्यों का परित्याग किया और ये सब ईश्वरों को, देवताओं को दिखाया कि मैं किस प्रकार से हरिणा भृत्य वश्यतः, मैं किस प्रकार से अपने भृत्य के वश में आ सकता हूं, अपने सेवक के वश में मैं आ जाता हूं। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहला ऐश्वर्य भगवान ने अपना कौन सा त्यागा, कि भगवान जाकर माता यशोदा की साड़ी को खींचने लगे। माता यशोदा दही बिलो रही है और भगवान जाकर साड़ी को खींच रहे हैं कि मुझे ये तुम्हारा माखन नहीं, मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। तमस्तन्य काम आसाद्य। तो सबसे पहला ऐश्वर्य भगवान ने कौन सा परित्याग किया, कि भगवान जो परमेश्वर हैं उनका एक गुण है कि वो आत्माराम है। भगवान है आत्माराम। क्यों भगवान को आत्माराम कहा गया है? क्योंकि भगवान को किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। हमें देखिए इस संसार में कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए। एक घर चाहिए, परिवार चाहिए, उसके अंदर इतने सारे पदार्थ चाहिए, इतने कमरे चाहिए, किचन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, बालकनी चाहिए, टेरेस चाहिए, कपड़े चाहिए, कुत्ते चाहिए, बिल्ली चाहिए, क्या क्या कुछ नहीं चाहिए लोगों को आजकल। इसलिए भगवान आत्मा राम है और हम कौन है? चालू राम। ये हमको ये सारी चीजें चाहिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, परंतु भगवान आत्मा राम है, उन्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वही सृष्टि करता है, सभी चीज उन्हीं से आ रही है। तो यदि सभी चीज भगवान से आ रही है तो क्यों भगवान को किसी और व्यक्ति के दूध की आवश्यकता पड़ सकती है जब वो आत्माराम है? तो जब भगवान ने माता यशोदा को संकेत किया कि मुझे तुम्हारा दूध चाहिए, तो भगवान ने अपने इस ऐश्वर्य का परित्याग किया, आत्माराम होने का ऐश्वर्य का परित्याग किया, कि हालांकि लोग मुझे आत्माराम कहते हैं परंतु जब तुम्हारा संपर्क होता है माता यशोदा तो मैं आत्माराम का जो पद है उसे मैं त्यागता हूं, इसलिए मुझे आवश्यकता है तुम्हारे दूध की। तो तुरंत माता यशोदा ने वो दही जो बिलो रही थी उसे छोड़ दिया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में रखकर अपना स्तनपान कराने लगी। इसीलिए इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं किसी सेवा में और हम यदि सोचें कि नहीं मैं उन्हीं की सेवा किसी और तरीके से करूं तो वो सही नहीं है। यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तो माता यशोदा ने उस सेवा को छोड़कर साक्षात भगवान की सेवा में वो लग गई। तो माता यशोदा अपना स्तनपान करा रही हैं। अब जीव गोस्वामी वो कहते हैं कि माता यशोदा जब अपना स्तनपान करा रही थी तो वही पद्मगंधा दूध, कुछ दूध उसका दही में परिणित कर वो माखन बिलो रही थी और उसी का कुछ बाकी रहा शेष दूध वो अंदर रसोई घर में उबालने के लिए रखी थी। दिवाली का दिन था तो उस दूध का वो मिठाई बनाने वाली थी। तो माता यशोदा को लगा कि अब वो दूध अंदर उबल रहा है, तो माता यशोदा ने अब सोचा कि कृष्ण के लिए मेरा दूध तो हर समय है मौजूद, परंतु यदि वो दूध उबलकर नीचे गिर जाएगा तो आज कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त जो है इसी प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है कि कितना मैं अधिक से अधिक सेवा कर पाऊं भगवान की। हमारी चेतना क्या रहती है कई बार, कितना मैं कम से कम सेवा कर पाऊं, कम से कम सेवा में जितना मेरा काम बन जाता है वो हो जाना चाहिए। परंतु यहां माता यशोदा सोच रही थी कि मेरा दूध तो हर समय है कृष्ण के लिए, परंतु वो विशेष दूध यदि उफन कर नीचे गिर जाएगा तो वो दूध उसकी सेवा नहीं हो पाएगी। अब जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो दूध अंदर क्या सोच रहा था, तो वो दूध अंदर पतीले में बैठे बैठे सोच रहा था कि ये माता यशोदा जिसका प्रेम असीमित है भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण असीमित हैं, तो माता यशोदा का प्रेम असीमित, भगवान असीमित, तो माता यशोदा का दूध असीमित, और यदि ये असीमित भगवान श्री कृष्ण असीमित दूध माता यशोदा का असीमित काल तक पीते रहेंगे तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य। तो इसलिए उस दूध ने आत्महत्या करने की सोची, इसलिए वो दूध उबलकर अग्नि में अपने आप की हत्या करने के लिए वो दूध नीचे गिरने लगा, ये दूध सोच रहा था। तो तुरंत माता यशोदा ने कृष्ण को नीचे रखा और अंदर गई वो उस दूध को देखने के लिए, संभालने के लिए। अब यहां पर देखिए भगवान श्री कृष्ण अपना दूसरा ऐश्वर्य उसका परित्याग कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कि वो आप्त काम है। आप्त काम क्यों है? क्योंकि भगवान छोटे सी ऑफरिंग से संतुष्ट हो जाते हैं। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कह दिया। तो केवल एक पत्र पुष्प फल और छोटा सा जल, उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और यहां पर तो माता यशोदा अपना दूध रोज पिलाया करती थी, और उस दिन काफी समय तक माता यशोदा ने अपना दूध पिलाया। तो भगवान जो आप्त काम है, वो जो गुण है भगवान का, वो गुण को यदि हम लें तो भगवान संतुष्ट हो जाने चाहिए थे उतने से दूध से। यदि भगवान ही कहते हैं कि थोड़ा सा जल मेरे लिए काफी है, तो यहां पर तो दूध पिलाए, जल नहीं, इतना विशेष दूध माता यशोदा के प्रेम युक्त दूध पिलाया, तो संतुष्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि वो आप्त काम है। परंतु भगवान अतृप्त हुए। वही भगवान जो आप्त काम है वो अतृप्त हो गए, क्योंकि उन्हें और प्रेम चाहिए था माता यशोदा को। तो ये दूसरा ऐश्वर्य, इसका परित्याग भगवान ने किया। तो भगवान अतृप्तता दिखा रहे थे, और केवल भगवान ने अपनी अतृप्तता दिखाई ही नहीं, बल्कि भगवान क्रोधित हो गए। ये तीसरा ऐश्वर्य भगवान ने अपना परित्याग किया, कि भगवान को कहा गया है त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के प्रति परे हैं भगवान। जैसे गीता में भगवान ने क्या कहा है, त्रिभीर गुणमयीर भावैर ए भी सर्वम इदम जगत, कि भगवान ये तीनों गुणों के रचयिता है, परंतु भगवान इससे परे हैं। और व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहता है। तो यहां पर भगवान इन गुणों का परित्याग करते हुए क्रोधित हुए माता यशोदा के ऊपर। और कितने क्रोधित हुए कि बताया गया है कि भगवान अपने होठों को अपने दांतों से चबा रहे थे। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं क्रोधित व्यक्ति के अंदर। यदि वो क्रोध आंखों में दिखाई देता है तो आंख लाल हो जाती है, यदि वो क्रोध जिह्वा पर आ गया तब तो फिर क्या कहना, यदि वो क्रोध हाथों पर आ गया तो हाथ चलना शुरू हो जाता है। छोटे से बालक कुछ नहीं कर सकते तो पैर फेंकना इधर उधर करना शुरू करते हैं। जैसे मुझे याद है बहुत से वर्ष पहले मैं जब अपने गांव गया था, तो वहां पर जो हमारा घर था वो घर के बीच में एक आंगन था, रेती का आंगन। राजस्थान में सब रेती के आंगन बीच में होते हैं। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था, जो हमारे दादाजी थे वो बहुत क्रोधित हुआ करते थे कई बार, और क्रोधित हुआ करते थे विशेष रूप से जब हमारी जो दादी थी कुछ कह देती थी जब उनको, ऐसा अक्सर होता है ना, जब पत्नी कुछ कह देती है पति से तो पति पति महाशय बहुत क्रोध करते हैं, परंतु कई बार वो क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से क्रोध को व्यक्त करते हैं। जैसे बंबई में एक व्यक्ति बता रहे थे, एक उदाहरण हुआ था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तो वो झगड़ा करते करते बालकनी में पहुंच गए और वहां से धक्का मार दिया पत्नी को नीचे पति ने, और धक्का मारते ही फिर उसने सोचा अरे मैंने क्या किया, तो भागकर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को कहा कि मुझे तुरंत लॉकअप में अंदर बंद करो। तो कहा क्यों, मैं पत्नी को धक्का मार दिया मैंने। तो क्या वो मर गई, बोलता नहीं इसलिए तो अंदर बंद करो। तो यदि झगड़ा भी करना है तो बालकनी में नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद है हमारे हमारे जो दादाजी थे वो क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। तो इनको क्रोध व्यक्त करना था तो कुछ बर्तन वहां पड़े थे, तो उन्होंने एक स्टील का ग्लास उठाया और मैं उधर बगल में खेल रहा था, तो वो स्टील का ग्लास रखा और उन्हें अपना क्रोध उस ग्लास के ऊपर व्यक्त करना था, तो उस ग्लास को लात मारना था उसे। तो मैं अपना खेल रोककर देख रहा था कि ये क्या चेष्टा कर रहे हैं। तो ग्लास उन्होंने रखा और थोड़े वृद्ध थे तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था उन्हें, तो वो ग्लास को रखा और थोड़ा पीछे रनअप लिया उन्होंने उसको लात मारने के लिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ना ये फुटबॉल तो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये फुटबॉल के बदले ग्लास को क्यों रख रहे हैं। तो थोड़ा पीछे गए और भाग कर आए उसको लात मारने के लिए, परंतु दो तीन बार उन्होंने प्रयास किया, वो दिख नहीं पाया ग्लास, तो पैर यहां वहां से सरक कर कभी दाएं कभी बाएं यहां वहां चला गया, ग्लास को लग नहीं पाया। तो मैंने सोचा मुझे थोड़ी सहायता करनी चाहिए इनकी, तो मैं फिर उनको उनको कमेंट्री देने लगा कि थोड़ा थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, यहां से ये ग्लास अभी इस तरह थोड़ा और 2 कदम आगे आइए और वहां से अब लात मारिए। तो वो भी सीरियसली पूछ रहे हैं, हाँ बताओ कहां पर है वो। और हम दोनों इतना उसके अंदर मग्न हो गए कि कैसे तो वो लात उस ग्लास पर लगनी चाहिए। और जैसे ही फिर बहुत प्रयास करने के पश्चात जब उन्होंने लात मारी उस ग्लास को, तब फिर सारा पारा नीचे आ गया। तो जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसको व्यक्त करता है किसी न किसी तरीके से। तो भगवान यहां पर जब क्रोधित हुए तो भगवान उसे व्यक्त कर रहे थे कि भगवान अपने होठों को अपने दांतों से दबा रहे थे। और आचार्य बहुत सुंदर टीका देते हैं इसकी कि भगवान इससे क्या प्रदर्शित कर रहे थे कि भगवान के जो होठ हैं एकदम लाल जो बिंब फल है उसके समान है भगवान के होठ, और भगवान के जो दांत हैं वो एकदम मोतियों के समान चमकदार सफेद। आजकल तो लोगों के उल्टे पाए जाते हैं, दांत लाल हो जाते हैं गुटखा खा खा कर, परंतु भगवान के दांत एकदम मोतियों के समान चमकदार। तो भगवान ये प्रदर्शित कर रहे थे कि जो लाल रंग है वो रजोगुण का प्रतीक है। तो भगवान के जो लाल होंठ उनको वो अपने सफेद दांत से दबा रहे थे, ये दर्शाते हुए कि यदि रजोगुण को वश में करना है तो उसे सत्वगुण से दबाना होगा। तो भगवान अपने सफेद दांत को उपयोग में ले रहे थे लाल होंठों को दबाते हुए, ये दिखा रहे थे। तो देखिए भगवान जब गुस्सा होते हैं उसमें भी भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो फिर भगवान ने सोचा कि माता यशोदा को क्रोध कैसे दिलाऊं मैं, क्योंकि विशेष रूप से भगवान तो क्रोध जब करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु भगवान चाहते थे कि माता यशोदा उनके ऊपर क्रोधित हो। तो माता यशोदा क्रोधित होंगी जब मैं ये माखन के विषय में कुछ करूंगा, क्योंकि ये सब जो कुछ आज वो कर रही है इसलिए कर रही है क्योंकि इतनी शिकायत मेरी माखन चोरी की वजह से आ रही है। तो फिर भगवान ने जितने भी छींके पर मटके लटके हुए थे उनको फोड़ फोड़ कर उनके माखन निकालने लगे। तो भगवान ने अपना चौथा ऐश्वर्य का परित्याग किया कि भगवान अपने ही घर में माखन की चोरी करने लगे। तो भगवान जो ईश्वर हैं उनका एक गुण है कि वो लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी के पति, और केवल एक लक्ष्मी के पति नहीं। यहां दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और सारी खिड़कियां खोलते हैं ताकि लक्ष्मी खिड़कियों से दरवाजों से अंदर आए। क्या होता है, लक्ष्मी एक खिड़की से आती है दूसरी खिड़की से चली जाती है, क्योंकि केवल लक्ष्मी की पूजा करोगे तो यही होगा, वो चंचला है। तो यहां पर भगवान लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानो, ब्रह्मा जी कहते हैं केवल एक लक्ष्मी के पति नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं भगवान। तो वो लक्ष्मी के पति जिनके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, वो लक्ष्मी के पति अब अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहे हैं। देखिए तो यहां पर भगवान अपना चौथा ऐश्वर्य का परित्याग कर रहे हैं कि उनका लक्ष्मी पति का जो पद है उसका परित्याग कर भगवान माखन चोर का पद ले रहे हैं, और भगवान इसमें विशेष आनंद लेते हैं। देखिए हालांकि भगवान को लक्ष्मीपति कहा गया है, भगवान को वैकुंठपति कहा गया है, भगवान के कितने ऐसे गुणों का व्याख्यान किया गया है, परंतु भगवान विशेष आनंद लेते हैं जब भगवान को माखन चोर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही प्रख्यात या प्रमुख व्यक्ति हो और यदि उसका कोई परिचय दे रहा हो कि ये फलाना व्यक्ति इंजीनियर है, मैनेजर है कंपनी का, इसका कोई बिजनेस भी चल रहा है और इसने इतनी डिग्रियां ली हैं, कोई उसका परिचय दे रहा है और साथ साथ परिचय में ये भी कहे कि ये साथ साथ चोर भी हैं, तो मैनेजर और ना ये सारी इंजीनियर डिग्री वगैरह इनकी हैं, बचपन में पेंसिल रबर ये सब भी चोरियां किया करते थे, ये तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को। हा? जैसे कल मेरा परिचय दे रहे थे भक्त, वो प्रेरणा प्रोग्राम के पहले, तो मान लो कि वो परिचय में सबको कह रहे हैं कि ये एयरफोर्स में थे, इन्होंने ये सब किया और ये खेलिया करते थे और साथ साथ बचपन में चोरी भी किया करते थे, तो लोग जब सुनेंगे तो कैसा लगेगा प्रवचन से पहले चोरी किया करते थे। परंतु भगवान देखिए भागवत में वो अपना परिचय दे रहे हैं, हालांकि वो लक्ष्मीपति वैकुंठपति सब कुछ हैं, परंतु भगवान अपना परिचय दे रहे हैं क्या, चोर का, कि मैंने बचपन में जो माखन चोरी की वो मेरा वास्तविक परिचय होना चाहिए। ये है भगवान, देखिए वो परिचय अपना दे रहे हैं। और इसलिए हम एक भजन गाया करते थे बचपन में, वो बहुत सुंदर भजन था, तो मुझे पूरा याद नहीं, परंतु उस भजन में यही भगवान की माखन चोरी लीला के विषय में था। तो उसमें माता यशोदा भगवान को पूछ रही हैं कि तुम सभी वस्तुओं में से केवल माखन की चोरी क्यों करते हो। तो बहुत सुंदर भगवान उत्तर देते हैं माता यशोदा को। भगवान कहते हैं माता यशोदा को कि तुम जानना चाहती हो कि मैं माखन की ही चोरी क्यों करता हूं, क्योंकि जब भी मैं ये माखन शब्द के संपर्क में आता हूं तो मुझे माता यशोदा तुम्हारी याद आती है। क्यों? क्योंकि माखन ये शब्द शुरू होता है मां से। ये माखन शब्द में मां शब्द छिपा है, इसलिए जब भी मैं माखन के संपर्क में आता हूं तो तुम्हारी याद आती है, इसलिए मैं सोचता हूं कि ये चोरी कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम, मां का प्रेम इतना गहरा है कि मैं बिना उसके संपर्क में रहे रह नहीं सकता। तो भगवान अपने ही घर में माखन चोर बन रहे हैं अब। तो माता यशोदा दूध को संभाल कर जब बाहर आती हैं तो वहां पर देखा सारा माखन बिखरा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे माखन में उनके पद चिन्ह बने हुए, और तुरंत माता यशोदा जान जाती है कि एक ही चोर है वृंदावन में, चोर नंबर वन वो है, ये मेरा पुत्र, और आज घर में ही इसने ये सब उपद्रव किया है, तो आज तो मैं स्वयं साक्षी हूं इसकी चोरी की, तो मुझे स्वयं इसे आज दंड देना है। तो तुरंत माता यशोदा छड़ी उठाती है और ढूंढने के लिए कि कहां पर ये और उपद्रव कर रहा है घर पर। तो भगवान देखिए माता यशोदा को मटकी वगैरह फोड़ कर तो क्रोध दिला ही दिया, और क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने क्या किया, बंदरों को खिलाने लगे कि इतना परिश्रम कर ये माखन निकाला और भगवान बंदरों को खिला रहे हैं माखन। हालांकि भगवान का प्रयोजन क्या था बंदरों को खिलाने का, कि भगवान याद कर रहे थे कि मेरे पिछले अवतार में मैंने इन बंदरों को बहुत तपस्या करवाई थी, ये बंदर इतने तपस्या किए थे, वो रावण दुष्ट उस पर संहार करने के लिए वो पुल बांधा और वहां पर मैं खुद वनवास में था तो मैं क्या खिलाता इन्हें, परंतु मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि मेरे अगले अवतार में तुम सब बंदरों को मैं जी भर कर पेट भर कर खिलाऊंगा। तो भगवान को यह याद आ रहा था, तो भगवान ने सोचा कि आज दिवाली का भी दिन है, दिवाली के दिन दूसरों को खिलाया जाता है, तो बंदरों को वो माखन खिला रहे थे। अब ये बंदर और एक प्रयोजन भगवान का ये था कि भगवान बंदरों को इसलिए खिला रहे थे कि जब पीछे से माता यशोदा आएगी तो सबसे पहले ये भागेंगे, तो ये भागेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अब मुझे भी भागना शुरू करना है। तो इसलिए वो बंदरों को खिला रहे थे और देख रहे, तो जैसे ही उन बंदरों ने देखा कि पीछे से माता यशोदा छड़ी लेकर आ रही है, तो सारे बंदरों की आंखें बड़ी हो गई और वो कूद कर भागना शुरू किए। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण को संकेत मिल गया कि अब मुझे भी 9, 2, 11 होना है, तो भगवान भी दौड़ना शुरू किए। और यहां पर देखिए भगवान अब अपना 5वां ऐश्वर्य का परित्याग कर रहे हैं कि भगवान दौड़ रहे हैं और भगवान पकड़े जाते हैं उन माता यशोदा के हाथों द्वारा, वो भगवान जिनको बड़े बड़े योगी मन की गति से भागते हुए भी नहीं पकड़ पा रहे। अब देखिए माता यशोदा, उसके पहले बताया गया कि माता यशोदा जब भाग रही थी कृष्ण के पीछे, तो माता यशोदा के जूड़े में जितने भी मालती के पुष्प थे, वो सारे मालती के पुष्प, 3 प्रकार के पुष्प वो गिरने लगे नीचे। और वो पुष्प भी क्यों गिर रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे। और वो पुष्प क्या सोच रहे थे? तो सबसे पहले श्रेणी के मालती के पुष्प वो सोच रहे थे कि ये माता यशोदा का क्या भाग्य है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने जा रही है, जिनको बड़े बड़े योगी इतनी तपस्या कर इतने वर्षों तक, और उनकी स्पीड क्या है? योगियों की स्पीड मन की स्पीड पर चलते हो, और मन की स्पीड क्या है आप सब जानते हैं। तो जहां कहीं पर भी वो गया होगा तो फिर से बुला सकते हैं 1 मिनट में उसको, 1 सेकंड में भी। तो मन की स्पीड से ये सारे योगी जब प्रवास करते हैं फिर भी ये भगवान के प्रपद को भी नहीं प्राप्त कर सकते। यहां पर माता यशोदा ये तुरंत पकड़ने वाली है इन कृष्ण को। तो वो मालती पुष्प सोच रहे थे कि हमारा इनके सर पर नहीं, इनके चरणों पर हमारा स्थान होना चाहिए। तो वो पुष्प गिरकर माता यशोदा के चरणों पर गिर रहे थे। और दूसरे श्रेणी के जो मालती के पुष्प थे वो सोच रहे थे कि ये माता यशोदा आज कृष्ण को पकड़ने वाली है, और जैसे ही भगवान कृष्ण को ये पकड़ लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमको देखेंगे कि तुम भी इसमें भागीदार हो लगता है। तो उन्होंने सोचा कि हमें इसमें भागीदारी नहीं लेनी, तो इसलिए हम छोड़ते हैं माता यशोदा का संग अब। तो वो सोचते हुए वो पुष्प नीचे गिर रहे थे, माता यशोदा का संग छोड़ रहे थे। और तीसरी श्रेणी के जो मालती के पुष्प थे वो सोच रहे थे कि माता यशोदा इतना प्रयास कर रही है कृष्ण को पकड़ने का, और कृष्ण तो इतने चुस्त हैं भागने में, और ऐसा नहीं था कि माता यशोदा रोज ट्रेनिंग ले रही थी जॉगिंग का कि मेरे को दिवाली के दिन पकड़ना है इन कृष्ण को, तो थोड़ा स्टैमिना बढ़ाकर रखना चाहिए। तो ये तीसरे श्रेणी के पुष्प सोच रहे थे कि माता यशोदा का भार हम हल्का करते हैं तो थोड़ा हम नीचे गिर जाते हैं ताकि इनका भार हल्का हो जाए तो ये थोड़ा और तेजी से भाग सके। तो ये वो मालती के पुष्प सोच रहे थे। तो माता यशोदा भाग कर कृष्ण को तुरंत पकड़ लिया, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगाना पड़ा माता यशोदा को कृष्ण को पकड़ने के लिए, तुरंत माता यशोदा ने पकड़ लिया। और जैसे ही माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, एक हाथ से भगवान को पकड़े है और दूसरे हाथ से छड़ी दिखाए है, तो जैसे ही अब ये भगवान जो कि भय को भी भयभीत करने वाले हैं, तीसरे स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतिंद्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात, कि इस संसार में स्वयं भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, हवा चल रही है, भगवान कहते हैं मेरे भय से ये हवा बहती है, भगवान के भय से। सूर्य जो तप रहा है इतनी रोशनी देता है, वो रोशनी दे रहा है भगवान के भय से। सूर्य स्तपति मदभयात, वर्ष तिंद्रो दहत अग्निर, इंद्र वर्षा करते हैं भगवान के भय से। हालांकि गोवर्धन लीला में भगवान के भय से रोक दिया भी था, परंतु वर्षा इंद्र करते हैं भगवान के भय से। और कपिल मुनि कहते हैं मृत्युश्चरति मदभयात, कि मृत्यु स्वयं मृत्यु लोगों के ऊपर जा जाकर उनको खटखटाकर कहती है कि तुम्हारा समय हो गया। वो मृत्यु मूर्तिमान मुझसे भयभीत है। तो मूर्तिमान मृत्यु जो भगवान कपिल मुनि से भयभीत है, जो कि केवल एक अंश है भगवान श्री कृष्ण के, वो कृष्ण अब यहां पर रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग में न शातन का नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम। रुदंतम रो रहे हैं और नेत्र अपने कर अम्ब से, अपने कर कमलों से अपने नेत्रों को वो रगड़ रगड़ कर अपने आंसू पोंछ रहे हैं। और इतने वो भयभीत हुए हैं केवल वो छड़ी को देखकर। देखिए जो मूर्तिमान जो मृत्यु है भयभीत है भगवान से, वो एक छड़ी से भयभीत है यहां पर। और मुहुश्वास उनकी जो श्वास है वो इस प्रकार से कंपन हो रही है अंदर कि जो उनकी रेखाएं हैं उनके कंठ के ऊपर, उसके ऊपर कंपन दिख रहा है। इतने भगवान भयभीत हैं। देखिए तो भगवान जो सबको भय प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान भयभीत हैं आज माता यशोदा के प्रेम को देखते हुए। तो ये अगला ऐश्वर्य भगवान ने त्याग किया अपना। और फिर माता यशोदा ने तुरंत भगवान को पकड़ लिया। और यहां पर हम जो देखते हैं इस सुंदर चित्र में, माता यशोदा प्रयास कर रही है कृष्ण को उखल से बांधने के लिए। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और इस उखल को भी पकड़ा कि इस उखल के ऊपर चढ़कर भगवान ने मटका फोड़ा है और बंदरों को माखन खिलाया है, तो उखल को भी दंड देना चाहिए। तो दोनों को साथ साथ माता यशोदा दंड दे रही थी, उखल को और भगवान कृष्ण को। तो उखल के पास ले गई और कहा कि आज दिन भर, दिवाली के दिन दिन भर यहां पर बंधे रहना, कोई पटाखे नहीं मिलेंगे आज। तो वहां पर बांधने का प्रयास किया माता यशोदा ने, तो एक रस्सी पड़ी हुई थी बगल में और रस्सी उठाई और सोचा कि रस्सी से बांध दूंगी आज, ये तो छोटा सा ही है, कहां यहां से निकलकर भागेगा। तो प्रयास किया तो वो छोटी सी रस्सी दो उंगल छोटी पड़ी। तो थोड़ा अचरज किया, ये दो उंगल छोटी कैसे पड़ रही। तो दूसरी और रस्सी लेकर आई, वापस उस रस्सी में बांधा, वापस से प्रयास किया, कितनी उंगल छोटी, हर साल दो उंगल ही रहती है। तो दो उंगल छोटी, फिर और रस्सी, और कितनी रस्सी माता यशोदा लेकर आई, 9 लाख गायें हैं, तो 9 लाख गायों को बांधने के लिए कितनी रस्सी, 9 लाख रस्सियां, और उन 9 लाख गायों का दूध निकालने के लिए एक और सेट रस्सी का होता है उनके पैरों को बांधने के लिए। तो 9 लाख 9 लाख 18 लाख, 18 लाख रस्सियां तो नंद भवन से ही वहां पर मिल गई, उन सबको बांध दिया। कितना समय उसमें गया होगा, उन सबको बांध बांध कर माता यशोदा अब प्रयास कर रही हैं कृष्ण को बांधने का। और सारी गोपियां, सब वृंदावन में जितनी भी रस्सियां थी, सारी रस्सियां खत्म हो गई, यहां पर सारी रस्सियां बांध दी, फिर भी दो उंगल छोटी। तो माता यशोदा सोच रही हैं, कृष्ण को देख रही हैं, लेकिन ये कृष्ण की कमर तो उतनी ही है, ऐसा नहीं कि कृष्ण की कमर कमरा में परिवर्तित हो रही है, कमर उतनी ही है, परंतु ये रस्सी इतनी लगाई जा रही हूं और ये दो उंगली क्यों छोटी हो रही। तो ये आश्चर्यजनक जो दृश्य देख रही थी माता यशोदा, तो समझ में नहीं आ रहा। और माता यशोदा ने कुछ यहां पर प्रयास छोड़ा नहीं, और रस्सी और रस्सी, और सारी गोपियां हंस रही हैं और कृष्ण हंस रहे हैं, परंतु माता यशोदा हंस नहीं रही थी। माता यशोदा बहुत सीरियस थी, बांधना ही है आज। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि जो माता यशोदा का जो दृढ़ निश्चय था बांधने का भगवान श्री कृष्ण को, वो एक उंगल है उनका प्रयास, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो है वो दूसरी उंगली। तो अब तक केवल एक उंगली माता यशोदा का प्रयास दिख रहा था, तो भगवान ने सोचा कि अब इतना माता यशोदा प्रयास कर रही है, पसीने पसीना हो रही है, तो अब मेरी कृपा जो दूसरी उंगली बाकी है वो कृपा भी अब मुझे दे देनी चाहिए कि मैं बंध जाना चाहिए। तो इसलिए हमको एक छोटा सा बालक एक बार प्रश्न पूछ रहा था कि आप कहते हैं कि भगवान को बांधना है तो हमारा प्रयास होना चाहिए वो एक उंगली है हमारी, और भगवान की कृपा होनी चाहिए वो दूसरी उंगली है भगवान की, तो जब वो दो उंगली मिल जाएगी तब जाकर हम भगवान को बांध पाएंगे। तो ये पूछ रहा था बालक, तो भगवान की उंगली तो ठीक है परंतु मेरी उंगली तो बहुत पतली है, और वास्तविक रूप में यदि उस उदाहरण उस दृष्टांत को हम लें कि हमारी उंगली की तुलना किससे की गई है, हमारे दृढ़ निश्चय से, तो हमारा दृढ़ निश्चय बहुत पतला है, परंतु भगवान की उंगली पतली नहीं है। भगवान कौन है? अणोर अणियान महतो महियान, कि भगवान चाहे अपनी उंगली कितनी भी पतली हो, भगवान अपनी उंगली उतना बड़ा कर सकते हैं और फिर हम भगवान को बांध सकते हैं। तो माता यशोदा जब हार गई, हार ही नहीं वास्तविक रूप में, परंतु भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप में हार गए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण हार गए देखते हुए कि इतना ये प्रयास कर रही है तो अब मुझे बंध जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ये अपना अगला ऐश्वर्य का परित्याग किया कि भगवान को कहा गया है मुकुंद, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वो मुकुंद अब यहां पर बद्ध हो गए हैं, वो बांधे गए हैं माता यशोदा के प्रेम के द्वारा। तो माता यशोदा ने उधर बांध दिया भगवान को, और फिर माता यशोदा अब दिन भर अपने बाकी के कार्यों में लग गई। तो बाकी के कार्यों में लग गई तो अब भगवान श्री कृष्ण उधर बहुत समय होगा खड़े हैं उखल से बंधे हुए, तो वो कुछ ग्वाल बाल आए वहां पर, तो ग्वाल बाल आकर देखते हैं कि आज तो लेट हो गया, कृष्ण बाहर नहीं आ रहा है। तो अपनी घड़ी देख रहे थे, लेट हो गया तो अंदर गए। अब देखा कि अंदर देखते हैं कि क्या आज माजरा है, दिवाली के दिन आज उठा नहीं लगता है। तो अंदर जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, अरे तो अपने ही घर में आज कैदी बना हुआ है और यहां पर बांधा हुआ है। तो सब आकर देख रहे हैं ऐसे कृष्ण को, तो भगवान जा रहे देखते क्या हो, खोलो इधर। तो वो थोड़ा डर रहे थे कि भाई ये माता यशोदा ने बांधा है और हम जाकर यदि खोल देंगे तो ये तो खुलकर भाग जाएगा, फिर यशोदा माई हमको बांध देगी यहां पर। पुलिस में ऐसे होता है, यदि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई कैदी यदि फरार हो जाए तो जिस पुलिस की ड्यूटी में फरार हुआ है उसको अंदर कर दिया जाता है, अब तुम अंदर जाओ, कोई ना कोई अंदर रहना चाहिए। तो ये लोग सोच रहे थे कि अरे भाई अभी यदि इसको खोल दिया और माता यशोदा अंदर से आकर देख लिया उन्होंने, फिर भी उन्होंने सोचा कि दोस्त है तो दोस्त के नाते दोस्ती निभानी चाहिए, तो आके प्रयास किए खोलने का। तो प्रयास किए खोलने का तो एक भी ग्वाल बाल उस रस्सी को खोल नहीं पाया। क्यों खोल नहीं पाया? क्योंकि वो साक्ष्य रस में थे और रस्सी बांधी गई थी वात्सल्य रस में, तो वात्सल्य रस साक्ष्य रस से ऊंचा होता है, तो इसलिए ये साक्ष्य रस के जो भक्त थे भगवान के, वात्सल्य रस की डोरी को नहीं खोल पाए। अंत तक किसने खोला? नंद महाराज ने खोला। क्योंकि वो भी वात्सल्य रस में है। तो यहां पर वो प्रयास करने आ रहे, बोलते कृष्ण ये पता नहीं ये सील मार कर गई है माता यशोदा, ये तो खुल नहीं रही रस्सी यहां पर। तो कृष्ण वहां पर उनको बोल रहे हैं अरे थोड़ा और ताकत लगाओ, इतना माखन खिलाया तुमको चोरी कर कर कर, थोड़ा उसका बिल भरो अब। तो इतना प्रयास कर रहे, कोई खुल नहीं, किसी से नहीं खुल रहे। तो वो लोग हार कर वहां पर बगल में खड़े रहे। तो हम वहां पर बलराम जी अंदर आए, तो बलराम जी अंदर आए तो बलराम जी वहां पर देखते हैं कृष्ण को ऐसे खड़े हुए। तो कृष्ण को कहते हैं क्या हो रहा है कृष्ण, रोज तुम्हारे उपद्रव इतने बढ़ते जा रहे हैं, आज घर पर ही आज घर को भी नहीं छोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की तरफ देख रहे हैं कि एक तो बांधा गया हूं मैं तो खोलना चाहिए, उसके बजाय तो यहां पर और डांट फटकार मिल रही। तो बलराम जी वो भी थोड़ा प्रयास किए खोलने का, वो भी नहीं खोल पाए। तो बलराम जी फिर कहते हैं आप अपने कर्मों को भुगतो, खड़े रहो यहां पर इतनी चोरियां करते हो। तो भगवान बलराम जी भी फिर वो सोचे कि ठीक है, उनको याद आ गया कि अरे भाई ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इतने बड़े सृष्टि करता है, इनको यहां पर बांधा गया है। तो वो चिल्लाने लगे, आवेश में आ गए, बलराम आवेश में आ गए और चिल्लाने लगे किसने बांधा है, और चिल्लाने लगे जोर जोर से सामने आओ मेरे जिसने बांधा है इनको। तो माता यशोदा अंदर से सुनती है कि ये कौन आज किसकी आवाज आ रही, क्योंकि कृष्ण की आवाज तो नहीं हो सकती, उसको तो बांध कर चुप कर दिया है आज। तो बलराम जी की आवाज जैसी महसूस हो रही थी तो माता यशोदा बाहर आई और माता यशोदा देखती है बलराम जी, बोलते किसने बांधा है आज। तो माता यशोदा कहती हैं मैंने बांधा है। हाँ बोलो क्या कहना है, तुमको पता नहीं कौन है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि करता है, ये है स्वयं श्री कृष्ण अवतारी, स्वयं भगवान है ये, और इनको यहां पर एक कैदी के समान उखल से बांधा हुआ है रस्सी से, ये मजाल तुम्हारी की बांध दिया इस प्रकार से आज, वो भी दिवाली के दिन। तो माता यशोदा सब सुन रही, फिर से कहो कौन है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टिकर्ता अवतारी, ये अपनी स्वेच्छा से अवतार लिए तुम्हारे घर में और इसका गलत फायदा उठाकर ये बांधने का काम किया यहां पर। तो माता यशोदा फिर पूछती हैं अच्छा ये स्वयं अवतारी हैं और तुम कौन हो। तो बलराम जी कहते हैं मैं इनका अंश शेषनाग हूं, मैं सबसे पहला अवतार इनका मैं ही हूं बलराम। तो माता यशोदा फिर से रसोई घर में गई और छड़ी उठाकर लेकर आई, और माता यशोदा छड़ी उठाकर दिखाती है सारे भगवानों को मेरे घर में जन्म लेना था। और जैसे बलराम जी ने देखा अरे भैया ये तो यहां पे तो हमारे सबके अवतार ये माता यशोदा यहां पर हैं, तो वो दुम दबाकर भागने लगे वहां से। एक बहुत सुंदर मुद्दा, हम जब एक वृंदावन यात्रा में गए थे तो जनानिवास प्रभु सुना रहे थे कि जब माता यशोदा प्रयास कर रही थी कृष्ण को बांधने का उखल से, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हम लोग जब गाते हैं तो हम क्या गाते हैं, श्री श्री राधा दामोदर भगवान, और जीव गोस्वामी के जो आराध्य देव हैं वो भी हैं राधा दामोदर वृंदावन में और जयपुर में है। तो यहां पर इस लीला में जहां पर माता यशोदा कृष्ण के साथ ये लीला हुई तो राधा दामोदर कैसे कहा गया, राधा रानी तो माधुर्य रस में है। तो बता रहे थे कि जब माता यशोदा प्रयास कर रही थी बांधने का भगवान श्री कृष्ण को, तो सारी रस्सियां वो 18 लाख रस्सियां नंद भवन की वृंदावन की सारी रस्सियां सब खत्म हो गई और फिर भी भगवान बंधे नहीं, तो माता यशोदा हताश होकर वहां पर बैठी थी। तब श्रीमती राधा रानी वहां पर आई, तो श्रीमती राधा रानी आई तो श्रीमती राधा रानी ने जब माता यशोदा को देखा तो तो श्रीमती राधा रानी अपनी चोटी से एक फीता बाहर निकालती हैं, अपनी चोटी का एक फीता निकालती हैं और वो माता यशोदा को देती हैं, ये इसको ट्राई करो। तो अपना फीता निकाल कर जब वो दिया उन्होंने, तो माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, अब इतना सब कुछ मैंने ट्राई किया है तो ये फीता ही सही। और छोटा सा फीता था, राधा रानी के चोटी से जो फीता उन्होंने निकाला वो छोटा सा फीता था, फीता मतलब रिबन। तो वो निकाल कर जब दिया, और वो जब माता यशोदा ने वो इतनी लंबी रस्सी को जब बांधा, तब भगवान श्री कृष्ण बंध गए। इसलिए उनको राधा दामोदर भी कहा गया है, कि श्रीमती राधा रानी का अंततः जब फीता लगा तो वो भगवान श्री कृष्ण का उदर उस फीते से बंधा गया। तो इसलिए उनको राधा दामोदर के नाम से भी उनका गुणगान किया जाता है। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण यहां पर खड़े हैं और अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे, तो ये अंतिम ऐश्वर्य भगवान का, कि वही भगवान जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और इसी लीला में आगे चलकर वो नल कुंवर और मणिग्री उनका उद्धार करने वाले हैं। वही भगवान जब उन्होंने नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया, तब भी भगवान बंधे हुए थे उखल से, उखल को घसीटते हुए ले गए वो दो अर्जुन वृक्ष के मध्य से, और जब अर्जुन वृक्षों को गिराया और वहां से वो दो तेजस्वी व्यक्ति बाहर निकले और उनका बंधन मुक्त हुआ वो, तो वो भगवान को गुणगान करते हुए पूछते हैं, आपकी रस्सी भी खोल देंगे? तो भगवान ने मना किया, नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। तो भगवान उनका उद्धार करने के बाद हंस रहे थे, ये सोचते हुए कि देखो ये क्या अद्भुत लीला है मेरी, कि मैं बंधा हुआ हूं और मैं इन दोनों को मुक्त कर रहा हूं। कौन व्यक्ति संसार का ऐसा होगा जो स्वयं बंधा हुआ है और दूसरों को मुक्त कर रहा है? और परंतु भगवान उस लीला में, उनको मुक्त करने की लीला में ये दर्शा रहे थे कि वास्तविक रूप में मेरे अंदर तो शक्ति है ही लोगों को मुक्त करने की, परंतु मेरे पद चिन्हों पर जो भी चलेगा उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी। और वो कौन था? उखल। जब भगवान वहां पर अपने आप को रेंगते हुए चल रहे थे, तो भगवान के पीछे पीछे भगवान के पद चिन्हों पर कौन चल रहा था? वो उखल। और उखल अटका उन वृक्षों के मध्य में, और उखल अटकने के वजह से वो वृक्ष नीचे गिरे। तो भगवान ये दिखा रहे थे कि मैं तो दूर की बात, मेरे पद चिन्हों पर जो कोई चलता है वो भी किसी का उद्धार कर सकता है, उसके अंदर भी इतनी शक्ति मैं दे देता हूं। तो भगवान ने स्पर्श नहीं किया तो दोनों वृक्षों को, परंतु भगवान ने यही सोचा कि नारद मुनि ने कृपा की है इनके ऊपर, इसलिए नारद मुनि की बात रखने के लिए इनका उद्धार मैं कर दूंगा। तो इस प्रकार से एवं संदर्शित ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यत स्ववशे नापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे, कि भगवान इस लीला के द्वारा सारे देवताओं को, सारे प्राणियों को ये दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जब माता यशोदा का प्रेम आता है तो मैं अपने सभी ऐश्वर्यों का परित्याग करता हूं उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और हमें इस लीला से क्या सीखना चाहिए? हमें इस लीला से यही सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से माता यशोदा का इतना दृढ़ निश्चय था भगवान को बांधने का, यदि हम भी अपने हृदय में भगवान को बांधने का दृढ़ निश्चय करें, यदि अंश मात्र भी करें, माता यशोदा के दृढ़ निश्चय का एक अंश भी यदि हमारे अंदर आ जाए, तो हम भी भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से बांध पाएंगे। और वो बांधना केवल भक्ति से ही हो पाएगा, क्योंकि दुर्योधन ने भी दामोदर लीला ट्राई की थी। दुर्योधन भी भागा था भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए। कब? महाभारत में है वर्णन, जब भगवान शांतिदूत के रूप में गए थे हस्तिनापुर, तो दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था, और वो भी किसको? विश्वरूप को। यहां पर तो माता यशोदा जब भगवान बाल गोपाल के रूप में थे उनके पीछे बाप भाग कर सारी रस्सियां कम पड़ गई, और दुर्योधन देखिए उसकी हिम्मत, वो विश्वरूप के पीछे भाग रहा था और विश्वरूप को बांधना चाहता था, तो क्यों दुर्योधन नहीं बांध पाया? क्योंकि कोई भक्ति नहीं थी उसके अंदर। और माता यशोदा बांध पाई केवल क्योंकि उनके अंदर भक्ति ही भक्ति थी। तो इसलिए ये पूरी जो दामोदर लीला है भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के साथ जो की, वास्तविक रूप में भगवान ने जितनी भी लीला इस कार्तिक के मास में की है वो सारी लीला भगवान ने की अपने भक्तों के गुणों का बखान करने के लिए। रासलीला में भगवान ने गोपियों की शरणागति दिखाई, गोवर्धन लीला में भगवान ने ब्रजवासियों की श्रद्धा उनके ऊपर दिखाई, भगवान ने बोल दिया कि इंद्र यज्ञ नहीं करना, नहीं करना। और दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं यशोदा का दृढ़ निश्चय। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर की। तो अभी हम ये सुंदर दामोदर अष्टकम गाएंगे, वो लैंप्स वगैरह सबके लिए है दीप। तो विशेष रूप से आज ये जो दामोदर अष्टकम है, यदि हम पूरी लीला जो आज सुने हैं, यदि वो लीला के विषय में चिंतन मनन करते हुए ये दामोदर अष्टकम गाएं और यही प्रार्थना करें कि माता यशोदा का एक अंश भी यदि हमें मिल जाए तो हम भी भगवान को अपने हृदय में बांध पाएंगे। हरे कृष्णा।